दिन भर 26 अगस्त रविवार सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। बेरोजगारों को रोजगार देने के वादे के साथ जिम्बाब्वे में राष्ट्रपति बने एमर्सन मेनंगागवा। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिया पॉलिटिकल खीर बनाने का नया फॉर्मूला।
वंशियों का दूध और कुछ वंशियों का चावल मिला तो खीर बनने में।
और सुनिए जेल से निकलने के बाद संगीत से कैसे बदल रही है जिंदगियां।
मतलब निकल गया है तो।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। एमर्सन मेनंगागवा ने जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्होंने देश के लोगों से एकजुट होने और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे 2030 तक मध्यम आमदनी वाली अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। पोप फ्रांसिस ने आयरलैंड में रोमन कैथोलिक चर्च के कथित अपराधों पर ईश्वर से क्षमा याचना की है। आयरलैंड दौरे पर पहुंचे पोप ने कहा कि इन अपराधों के खुले जख्म चर्च के सामने चुनौती पेश करते हैं कि वो सत्य और न्याय की खोज में सुदृढ़ और निर्णायक बने। पोप के आयरलैंड दौरे के दौरान वहां महिलाओं और बच्चों से चर्च के सदस्यों की ओर से हुए यौन शोषण की घटनाओं की खासी चर्चा है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने भी दौरे से पहले पोप से अपील की थी कि वे पीड़ितों से मुलाकात करें। पोप के स्वागत में हजारों की संख्या में लोग बारिश के मौसम में भी घरों से बाहर निकले। नॉक स्थित मरियन तीर्थ के दौरे के बाद पोप ने कहा, मूर्ति के सामने अपनी प्रार्थना में मैंने उन पीड़ितों की बात की जिनके खिलाफ आयरलैंड के चर्च के सदस्यों ने अपराध किए। ऐसा कोई भी नहीं है जिस पर उन नौजवानों के उत्पीड़न की घटनाओं का असर ना हुआ हो, जिनकी निश्चलता छीन ली गई, जिन्हें उनकी माओं से जुदा कर दिया गया और दर्दनाक यादों के साथ अकेला छोड़ दिया गया। ये थे पोप फ्रांसिस के शब्द। अमेरिका के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक कहे जाने वाले सीनेटर जॉन मैकेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उन्हें उत्कृष्ट देशभक्त बताया। वहीं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भलाई के कामों के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मैकेन के परिवार के लिए अपनी संवेदनाएं एक ट्वीट के जरिए साझा की हैं। जॉन मैकेन रिपब्लिकन पार्टी से ही थे, लेकिन उनकी गिनती ट्रंप के कटु आलोचकों में होती थी। नौसेना के पायलट रहे मैकेन ने वियतनाम युद्ध के समय कैदी के तौर पर कई वर्ष गुजारे और यातनाएं सहीं। उन्हें ब्रेन कैंसर था। डेमोक्रेट पार्टी के नेता सीनेटर चक शूमर ने उन्हें याद करते हुए कहा,
As you go through life, you meet very few truly great...
जीवन में आपको बहुत कम महान लोग मिलते हैं, वो उनमें से थे। वो असल देशभक्त थे जिन्होंने वतन से प्यार किया, उन्होंने सेना से प्यार किया और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने उस समय भी सच बोलने की हिम्मत दिखाई जब सच बोलने वाले बहुत कम लोग थे। ये थे अमरीकी सीनेटर चक शूमर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तानी अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने अपने देश में चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के प्रमुख को नांगरहार में एक हवाई हमले में मार गिराया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अफगान और विदेशी सुरक्षा बलों के साझा अभियान में अबू साद अरहबी के अलावा चरमपंथी समूह के 10 अन्य सदस्य भी मारे गए हैं। प्रांत के गवर्नर ने कहा कि अरहबी जुलाई 2017 के बाद से मारे जाने वाले अफगानिस्तान इस्लामिक स्टेट के चौथे नेता थे। नेटो की अगुवाई वाली सेना ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उत्तर कोरिया के सरकारी अखबार रोडोंग सिनमुन ने अमेरिका पर जानलेवा स्पेशल यूनिट समेत गुप्त सुरक्षा ड्रिल चलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका दोहरी नीति अपना रहा है। दक्षिण कोरिया की मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए अखबार ने अमेरिकी सेना के जापान में कथित हवाई अभ्यास पर यह प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने की दिशा में जरूरी प्रगति नहीं हो सकी। दक्षिण कोरिया के अमरीकी दूतावास ने कहा है कि उसे कथित अभ्यास की कोई जानकारी नहीं है। आर्थिक संकट से जूझ रहे ईरान में संसद ने अपने वित्त मंत्री को पद से हटाने के पक्ष में वोट किया है। बैंकिंग व्यवस्था और आयकर नियमन से जुड़ी समस्याओं और अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की योजना पेश करने में नाकामी के लिए सांसदों ने उनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव पर मतदान किया। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर संदीप सोनी के साथ। आप हमें रेडियो के साथ साथ इस समय bbchindi.com पर भी सुन सकते हैं लाइव। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे में बेरोजगारों को रोजगार देने के वादे के साथ एमरसन मनगागवा ने आज राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। विपक्ष ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया, लेकिन राष्ट्रपति के समर्थक इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए सिंधु वासिनी त्रिपाठी से।
We have been stressed on what has been happening, the court procedures.
हम इस बात को लेकर थोड़े तनावग्रस्त थे कि अदालत की कार्रवाई में क्या होगा, लेकिन अब हम लोग खुश हैं क्योंकि सारी चीज़ों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब हम चाहते हैं कि लोग एक साथ मिलकर काम करें।
हम यहाँ मिलकर जिम्बाब्वे की जीत का जश्न मनाने आए हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति मनगागवा की जीत हम सब की जीत है। ये जिम्बाब्वे के आम लोग हैं जो देश को नया राष्ट्रपति मिलने से खुश हैं। एमरसन मनगागवा ने रविवार को जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। जब उन्होंने राजधानी हरारे के नेशनल स्टेडियम में शपथ ली तो स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
आई एमरसन डांबुजो मनगागवा,
मैं एमरसन डांबुजो मनगागवा ये शपथ लेता हूं कि मैं जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के तौर पर जिम्बाब्वे के प्रति वफादार रहूंगा। मैं जिम्बाब्वे के संविधान और इसके सभी कानून का पालन करूंगा और इनकी रक्षा करूंगा।
ये थे एमरसन मनगागवा के शब्द। इस शपथ ग्रहण समारोह में अफ्रीका के कई बड़े नेता और हजारों समर्थक मौजूद थे। हालांकि विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया। इसके ठीक एक दिन पहले मनगागवा के मुख्य प्रतिद्वंद्वी नेता नेल्सन चमीजा ने जुलाई में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने नतीजों में हेरफेर का आरोप लगाया था, लेकिन शुक्रवार को संवैधानिक अदालत ने उनके आरोपों को ये कहकर खारिज कर दिया कि नतीजों में गड़बड़ी के कोई सबूत नहीं है। शपथ ग्रहण के बाद नए राष्ट्रपति मनगागवा ने कहा,
मैं आप सबसे हमारी मातृभूमि के विकास के लिए एक साथ प्रतिबद्ध होने को कहता हूं। हम सब जिम्बाब्वे के रहने वाले हैं। हमें एकजुट करने वाली वजहें बांटने वाली वजहों से कहीं ज्यादा हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा कल आज से बेहतर होने वाला है। चलिए हम सब आगे के सफर की तरफ देखते हैं, वो सफर जिस पर एक साथ चलेंगे।
जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति मनगागवा के शब्द। मनगागवा ने कहा कि जिम्बाब्वे का मकसद साल 2030 तक एक मिडिल इनकम इकोनॉमी बनने का है। उन्होंने चुनाव के बाद होने वाली उस हिंसा की घटना की जांच कराने की बात भी कही जिसमें विपक्ष के 6 नेताओं को गोली मार दी गई थी। जिम्बाब्वे की प्रमुख विपक्षी पार्टी MDC के नेता शपथ ग्रहण समारोह में अनुपस्थित रहे और पार्टी ने समारोह का बहिष्कार किया। अमरीकी चुनाव पर्यवेक्षकों ने भी हाल ही में वहां हुए चुनावों की आलोचना की है और कहा है कि जिम्बाब्वे में एक सहिष्णु लोकतांत्रिक संस्कृति का अभाव है।
अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे में एमरसन मनगागवा बने राष्ट्रपति, वादा बेरोजगारों को रोजगार देने का।
खबर सच है अगर BBC पर है।
भारत में केंद्रीय मंत्री और बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पॉलिटिकल खीर बनाने का नया फॉर्मूला दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की बात को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आज कहा कि ऐसी खीर की जरूरत भी है। क्या है इसके राजनीतिक मायने, सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट में।
पिछड़ों के मसीहा कहे जाने वाले BP मंडल की कल जयंती थी। राजनीतिक दलों की बात करें तो सबसे बड़ा आयोजन केंद्र और बिहार में सत्तारूढ़ NDA के घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने किया। पटना के SKM हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दलित और पिछड़ों की व्यापक एकता की जरूरत को इस रोचक अंदाज में सामने रखा।
आज भी यही मान्यता है कि खीर मतलब सबसे अच्छा व्यंजन, लेकिन इसमें सिर्फ दूध और चावल से ही काम नहीं चलने वाला, इसमें पंचमेवा की भी जरूरत पड़ती है और इस पंचमेवा के रूप में जहाँ से स्वर्गीय बीपी मंडल साहब आते हैं उस इलाके में जाइए, तो एक प्रचलित शब्द है पंचफोरना, जिसमें अति पिछड़ा समाज के लोग, छोटी छोटी संख्या वाली जात के लोग, शोषित पीड़ित दबे कुचले, उनका पंच विवाह ही आवश्यक है।
उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान में जिन यदुवंशियों का जिक्र किया, बिहार में उनकी आबादी सबसे ज्यादा है। पिछड़े वर्ग की जातियों में उसके बाद कुशवंशियों की आबादी है, अभी के दौर में जिसके एक बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा माने जाते हैं। माना जाता है कि ये दोनों जातियां कुल मिलाकर बिहार की आबादी की करीब 20% हैं और इनका किसी एक गठबंधन में होना उसकी जीत की संभावनाओं को काफी बढ़ा देता है। ऐसे में कुशवाहा के कल के बयान का राजद नेता तेजस्वी यादव ने समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि स्वादिष्ट और पौष्टिक खीर श्रमशील लोगों की जरूरत है। गौरतलब है कि राजद पहले भी कुशवाहा को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता देता रहा है और कुशवाहा भी रह रहकर एनडीए की आलोचना करते रहते हैं, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का कहना है कि एनडीए एकजुट है।
सुंदर जी को मालूम है कि नित्यानंद यादव जी, भूपेंद्र यादव जी, नंदकिशोर यादव, रामकृपाल यादव, हुकुमदेव यादव का दूध और उपेंद्र कुशवाहा जी का चावल मिलेगा तो खीर बनी हुई है पहले से, वही खीर विकास की खीर है जो देश के लोग खा रहे हैं। एनडीए पूरी तरह एकजुट है, इकट्ठा है।
जानकारों का मानना है कि चुनावी साल में ऐसे बयान आते रहते हैं और अंतिम समय में कौन कहां जाएगा यह अभी पूरे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार कुशवाहा के कल के बयान को एक रणनीति के तहत देखते हैं।
तो जहां तक उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान की बात है और उस पर तेजस्वी का जो समर्थन आया है, तो कहीं ना कहीं ये बात जो पहले से चली आ रही थी, उपेंद्र कुशवाहा संभवत शायद एनडीए छोड़कर महागठबंधन की ओर आ सकते हैं, ये आप इस पर भी निर्भर करता है कि बीजेपी बिहार में अपने सहयोगी साथियों के साथ किस तरह डील करती है। निश्चित रूप से दोनों निशाना साधने, देखिए वो लालू जी से भी जाकर मिले और बीच में तो उन्होंने नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी।
माना जाता है कि बीते साल नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के एनडीए में शामिल होने के बाद कुशवाहा इस गठबंधन में सहज नहीं है और वे लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति धीरे धीरे सामने रख रहे हैं। साथ ही जानकार यह भी मानते हैं कि कुशवाहा जिस भी गठबंधन में रहेंगे उसकी राजनीतिक खीर ज्यादा स्वादिष्ट और मीठी होगी। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
उत्तराखंड में लगातार हो रही तेज बारिश और भूस्खलन की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। नैनीताल में भूस्खलन की वजह से अंग्रेजों के जमाने की ऐतिहासिक मॉल रोड में भी भूस्खलन जारी है, जिसकी वजह से यातायात का रास्ता बदला गया है। सुनिए नैनीताल से हमारे सहयोगी रोहित जोशी की रिपोर्ट।
नैनीताल में कई दिनों से हो रही बारिश थमी नहीं है। पिछले दिनों शहर की ऐतिहासिक लोअर मॉल रोड का एक बड़ा हिस्सा भूस्खलन के चलते झील में समा गया था। लगातार हो रही बारिश से यह भूस्खलन अब भी जारी है और अपर मॉल रोड पर भी खतरा छा गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रशासन के लिए लोअर मॉल रोड के पुनर्निर्माण का काम बेहद चुनौतीपूर्ण हो रहा है। स्थानीय लोग इस सब से काफी परेशान हैं। नैनीताल की एक स्कूल टीचर प्रियंका बिष्ट कहती हैं,
18 अगस्त को जब लोअर मॉल रोड टूटा था, उससे कुछ ही देर पहले मैं अपनी फ्रेंड के साथ उस रोड से गुजरी थी, बट उस टाइम पे उस पर नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा था। जब हम लोग ट्यूशन लेके वापस आ रहे थे, उस टाइम पे हमने देखा कि वो जो लोअर मॉल रोड का जो हिस्सा जो काफ़ी टाइम से वीक पड़ा हुआ था, अराउंड 2 से, जिसपे कि एस सच एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इस तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, गाड़ियों का ट्रैफिक उसमें मीन्स जो लोकल गाड़ियाँ हैं प्लस टूरिस्ट भी इस बार काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड रहा नैनीताल, तो उस पर लोड पड़ने की वजह से शायद वो मॉल रोड का जो पोर्शन है वो पूरा टूट चुका है। अभी वो जो पोर्शन है वो और ज़्यादा टूट चुका है और इसकी वजह से हम लोकलाइट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है।
प्रशासन ने लोअर मॉल रोड में ट्रैफिक बंद कर उसे डाइवर्ट कर दिया है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी नवीन तिवारी भी सबसे परेशान हैं।
नैनीताल में लोअर मॉल रोड में भूस्खलन के बाद से काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसमें एक तो वाहन की आवाजाही में काफ़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं, क्योंकि नैनीताल में दो ही मार्ग हैं वाहनों के आवागमन के लिए, एक लोअर माल रोड, एक अपर माल रोड। लोअर माल रोड का जो पोर्शन गिरा हुआ है, जिसमें काफ़ी नुकसान हो चुका है, वो अब एक तरह से अपर माल रोड को भी नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि उसमें जो पानी का स्तर है उधर बढ़ चुका है और रोड भी काफ़ी हद तक गिर चुकी है।
उधर भूस्खलन को रोकने और दोबारा सड़क बनाने के काम में जुटी एजेंसी PWD के इंजीनियर CS नेगी कहते हैं कि लोअर मॉल रोड के जल्द खुल पाने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा टूट गया है जिसे तेज बारिश और झील का पानी लगातार काट रहा है। साथ ही नेगी बताते हैं कि तेज बारिश में PWD के कर्मचारियों के लिए काम करना भी चुनौतीपूर्ण है। टूरिस्ट सीजन में हद से ज्यादा ट्रैफिक झेल रही मॉल रोड का मानसूनी बरसात में इस तरह भर भरा कर गिर जाना कई लोगों को आश्चर्य में नहीं डालता। स्थानीय लोग प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते मॉल रोड टूट गई। उधर पूरे उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटों में कुमाऊं और कुमाऊं से लगे गढ़वाल के कुछ इलाकों के लिए भारी बरसात का अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ ही पर्वतीय इलाकों में लोगों को यात्रा न करने का सुझाव भी दिया गया है। प्रदेश भर में भूस्खलन से सैकड़ों सड़कें बाधित हैं, जिसके चलते कई इलाकों से संपर्क टूटा हुआ है। रोहित जोशी, नैनीताल।
क्या आप हर महीने 20 रुपए की पगार पर नौकरी कर सकते हैं? मेरे इस सवाल पर आप पहले तो ये कहेंगे कि इस जमाने में हर महीने 20 रुपए की सैलरी कौन देता है और कौन काम करेगा 20 रुपए की सैलरी पर। लेकिन यकीन मानिए, भारत प्रशासित कश्मीर में एक बुजुर्ग महिला को अब से कुछ दिन पहले तक हर महीने 20 रुपए सैलरी मिल रही थी, वो भी कई वर्षों से। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट सुने।
ताजा बेगम बीते 36 वर्षों से कश्मीर के जिला कुलगाम के गाढ़ांजपोरा के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में काम कर रही हैं। ताजा बेगम यहां वर्ष 1982 में बतौर स्वीपर बहाल हो गई थी। उन्हें जो नौकरी का ऑर्डर उस समय दिया गया था, उसमें लिखा है कि ताजा बेगम को CPWO यानी कंजनमेंट परेड वर्कर्स के रूप में बहाल किया जा रहा है और उन्हें हर महीने स्कूल लोकल फंड से 10 रुपया दिया जाएगा। ताजा बेगम हर दिन स्कूल जाकर साफ सफाई का काम करती हैं। पूरी जिंदगी स्कूल में झाड़ू पोछा लगाने के बाद अब उन्हें इस बात का इंतजार है कि बुढ़ापे में कुछ तो उन्हें मुआवजा मिलेगा। वो कहती हैं,
वो बता रही थी कि मैंने पूरी जिंदगी स्कूल की गर्द खाई है, अब बीमार होने लगी हूँ, खांसी की मरीज बन गई हूँ। दुनिया बदल गई लेकिन मेरी किस्मत नहीं बदली, मुझे आज भी वही 20 रुपया मिलता है। जब मैंने स्कूल में स्वीपर के तौर पर काम करना शुरू किया था तो उस समय मुझे 1 रुपया की तनख्वाह मिलती थी। ये थे ताजा बेगम के शब्द। ताजा बेगम कहती हैं कि जो 20 रुपया उन्हें स्कूल से मिलता है, उस पैसे से तो वो दवाई भी नहीं खरीद पाती है। ताजा बेगम बता रही थी कि पहले मुझे यहाँ 1 रुपया मिलता था, फिर 5 रुपया मिलने लगे, फिर 10 और अब 20 रुपया मिलता है। मुझे खुद ही स्कूल के लिए झाड़ू खरीदना पड़ता है, जिसकी कीमत 50 रुपया होती है। ताजा बेगम अपने लिए न कभी कोई चीज खरीद पाती हैं और न अपने लिए कोई कपड़ा। ताजा बेगम के पति का और बेटे का बहुत पहले निधन हो चुका है। इस समय वो अपनी बेटी के घर में रह रही हैं। जिला कुलगाम के डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर बशीर अहमद का कहना है कि हमारी नोटिस में ये मामला आने के बाद विभाग ने फैसला किया है कि ताजा बेगम की तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। विभाग ने एक ऑर्डर कॉपी जारी कर अब ताजा बेगम की सैलरी हर महीने 500 कर दी है। गाँव के एक नागरिक मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि जब से ये स्कूल खुला है, तब से ताजा बेगम को हम स्कूल में साफ सफाई का काम करते देख रहे हैं।
जब से सुकूर यहाँ आया था, उसी तब से वो यहाँ सुई पर लगी है, तो 20 रुपये वो तनख्वाह लेते हैं, तब से वो 20 रुपये ही लेते हैं।
उत्तरी कश्मीर के अली मोहम्मद लोन का हाल भी ऐसा ही है। जिला कुपवाड़ा के चौकीबल जून ऋषिपोरा के 70 वर्ष के अली मोहम्मद लोन यहाँ के प्राइमरी स्कूल में 1982 से चपरासी के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें तब से सिर्फ 55 रुपया सैलरी मिल रही है। अली मोहम्मद का कहना है कि स्कूल के लिए उन्होंने जमीन भी दी, लेकिन उनकी तनख्वाह फिर भी नहीं बढ़ाई गई। अली मोहम्मद बता रहे थे कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो ये भी बता रहे थे कि 40 साल भी गुजर गए, लेकिन मेरी तनख्वाह अब भी वही 55 रुपया है। मैंने स्कूल के लिए जमीन भी दी थी,
آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس پیسے سے میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ تھے علی محمد کے شبد۔ کپواڑہ کے چیف ایجوکیشن آفیسر محمد شفیع وار کہتے ہیں کہ ہم سی پی ڈبلیو او ورکرز کی سینیارٹی کی بنیاد پر ان کی نوکری کو مستقل کرتے ہیں۔ بیتے ان چار ورشوں میں کئی سرکاریں تو بدلی، لیکن تاجہ بیگم اور علی محمد کی قسمت تو نہیں بدلی۔ ماجد جہانگیر، بی بی سی، سری نگر۔
دلی کی تہاڑ جیل سے چھوٹے کچھ قیدیوں نے اپنی زندگی کو ایک نئی دشا دینے کی کوشش کی ہے اپنے ایک الگ طریقے سے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ان پورو قیدیوں نے مل کر ایک میوزک بینڈ بنایا ہے جسے وہ اب آگے بڑھانے کی پرزور کوشش کر رہے ہیں۔ سنگیت ان پورو قیدیوں کی زندگی کو کس طرح بدل رہا ہے، بتا رہے ہیں بی بی سی سنواد داتا سہیل حلیم اپنی اس خاص رپورٹ میں۔
بھلے بورے سالے کرموں کا دیکھے اور دکھا،
کبھی ڈکیتی کے الزام میں تو کبھی جیب کاٹنے کے۔ اکرم نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ جیلوں میں ہی گزارا، لیکن پھر سنگیت نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔
میوزک جب میری زندگی کے اندر آیا تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ یار کتنی دردناک زندگی جی رہے تھے ہم، کتنی خوفناک زندگی جی رہے تھے ہم، کہ ہماری زندگی اتنی حسین، اتنی خوبصورت ہے، ہم اس کی قدر ہی نہیں بالکل بھی۔ ہم اندھے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، اندھیرے گپ میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اجالے کی قدر ہی نہیں بالکل بھی۔ اس چیز کا احساس ایسا ہوتا تھا میرے اندر کہ میں اس چیز کو بتاتے ہوئے بھی میرا رواں کھڑا ہو رہا ہے جسم کا، کہ حقیقت میں وہ بڑی دردناک زندگی تھی جس سے میوزک نے، تہاڑ آئیڈل نے مجھے نکالا ہے۔
اب اکرم کے پرانے یار دوست انہیں کسی کام کا نہیں سمجھتے، ان کے راستے اب جدا ہیں۔ تہاڑ جیل کے قریب ہی ایک بڑے سے کمرے میں یہ موسیقار ریاض کرتے ہیں۔ سازندوں میں سے کچھ پیشاور سنگیتکار ہیں اور کچھ سابق قیدی۔ کچھ نے سزائیں کاٹی، کچھ بری ہو گئے۔ ریفارم بینڈ نریش بینسلا اور رچنا جین کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔
اندر جیل میں جو انہوں نے سیکھا ہے، باہر آ کے ریفارم بینڈ بنایا ہے، تو میوزک اپنے آپ میں ایک تھراپی ہے، اور آج سب سے بڑی لارجسٹ انڈسٹری بھی ہے، تو ایک کمائی کا، روزگار کا ایک سادھن بھی ہے۔ تو میوزک کے تھرو اگر یہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ دے سکیں تو یہ بھی ایک اچھا کام ہوگا، اور پلس اسے ارن بھی کریں گے تو اپنے اور اپنے پریوار کی جیوکا بھی چلا پائیں گے، یہ اس کا مقصد ہے۔ مین
مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ واپس آ کے ہمارے میوزک کے تھرو ایک اچھا کام کر رہے ہیں، دوبارہ کرائم نہیں کر رہے، تو یہ تو بہت بڑا اچیومنٹ ہے ہمارے لیے۔ میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی، آپ کو اس لائن میں انٹرسٹ ہے تو آپ یہ کریے تاکہ آپ کی فیملی خوش رہے، آپ دوبارہ کرائم نہ کریں، آپ کو ایک روزگار بھی ملے۔
لیکن یہ کام آسان نہیں، قیدیوں کے ماتھے سے بدنامی کا داغ آسانی سے نہیں مٹتا۔ دھیرج بجاج نے ایک پراپرٹی کے کیس میں 6 سال جیل میں گزارے ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ ریفارم، ہم ریفارم کا حصہ ہے، لیکن ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ سماج اپنی سوچ کو بھی بدلے۔ ایک میسج ہم یہ دینا چاہتے ہیں اس بینڈ کے تھرو کہ اگر کوئی جیل جاتا ہے، اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ وہ برا آدمی ہے۔ سمپل سی سوچ ہے ہماری، اور شاید بہت بڑا بدلاؤ اس سوچ سے آ سکتا ہے سوسائٹی کے مائنڈ کا۔
دھیرج محمد رفیع کے بڑے مدعا ہیں۔
مطلب نکل گیا ہے تو پہچانتے نہیں ہیں، مطلب نکل گیا ہے تو پہچانتے نہیں۔
اکرم جیسے لوگ جب جیل جاتے ہیں تو سزا صرف انہیں نہیں، پورے خاندان کو ملتی ہے۔
جو ہم اندھے کنویں میں پڑے تھے، بالکل بیکار زندگی سے ویران، ہم پریشان، ہمارے بچے پریشان، ہمارا گھر پریوار پریشان، ایک ہمارے غلط ہونے سے ہمارا پورا پریوار، ایک نئی سزا نہیں کاٹ رہا تھا، ہمارے بچے بھی سزا کاٹ رہے تھے۔ ججوں کے آگے ہاتھ جوڑ لیں، وکیلوں کے پیر پکڑ لیں، تم نے کیا گناہ کرا ہے، تم کس بات کے ہاتھ پیر جوڑ لو، میں ہوں گناہگار۔
جگ سے جتنا بھاگ لے کوئی من سے بھاگ نہ پائے۔
میرا نام پروین ہے، میں اس دہلی کا رہنے والا ہوں۔ میری ایک لڑکے سے لڑائی ہو گئی تھی، جس میں کہ وہ لڑائی کے کارن میرے ہاتھ سے مر چکا تھا وہ، اور میرے کو اس میں 4 سال کی قید ہو گئی تھی، جس میں کہ میں نے 3 سال کاٹی اور باقی میں بری ہو چکا ہوں۔ اس ٹائم پہلے میں لڑائی جھگڑوں میں زیادہ رہتا تھا، تو اس کے اندر میرے کو جیل ہو چکی، फिर वहाँ पे मेरे को म्यूज़िक का एक कार्य मिला, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से करा, तो मेरी आज लाइफ बदल चुकी है म्यूज़िक में, तो मैं बहुत अच्छे से म्यूज़िक के अंदर ही रहना चाहता हूँ शुरू से लेकर एंड तक।
साजिद रेप के केस में जेल गए थे, बाद में इल्जाम गलत साबित हुए, वो इस बैंड का अहम हिस्सा है।
सर जैसे जीने के लिए सांसें जरूरी है, वैसे मुझे जीने के लिए मेरे को म्यूजिक जरूरी है। अपने आप में खो जाता हूँ, दुनिया की परवाह ही नहीं होती। और ऐसा भी लगता है सर कि शायद अब जिंदगी बदल भी गई है, जो एक स्टैम्प भी लगी थी वो लगता है कि इस लाइन से वो स्टैम्प भी मिट जाएगी मेरे लिए। जजेस ने तो मिटाई दी है, कोर्ट ने, जो कोर्ट का फैसला मेरे लिए आया, मेरे हक में आया, खुश हूं मैं कि बरी हो गया मैं, वो धब्बा तो मिट गया, पर फिर भी दुनिया के लिए तो स्टैम्प है कि जी जेल गया था आपका लड़का, जेल गया था। माँ बापों को भी थोड़ा ऐसे रहते हैं माँ बाप भी, हाँ कि मेरा बेटा जेल गया था, पर किसी को नहीं पता क्यों गया था, किस लिए गया था।
लव्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे।
ये म्यूजिक थेरेपी है, असर करने में जरा वक्त लेती है, लेकिन फिर इसका सुरीला जादू सर चढ़कर बोलता है। सुहेल हलीम, बीबीसी न्यूज, दिल्ली।
देने वाला भी तुझे याद तो होगा।
खेल समाचारों के लिए आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं। क्या हलचल है आज एशियाई खेलों में आदेश जी?
जी देखिए, आज आठवां दिन भारत के लिए बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि थोड़ी देर पहले एथलेटिक्स में 100 मीटर में दुती चांद ने रजत पदक जीता, और ये कामयाबी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, और यहाँ तक कि कई मुकदमे भी उन्हें लड़ने पड़े। और अगर एथलेटिक्स की ही बात की जाए तो युवा सनसनी हिमा दास ने भी 400 मीटर में रजत पदक जीता, और उसके अलावा मोहम्मद अनस ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। और एक नया खेल है ब्रिज, जिसे पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया, वहाँ भी भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता, और इसके अलावा मिश्र टीम ने कांस्य पदक जीता। और अगर घुड़सवारी की बात की जाए तो फवाद मिर्जा ने टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता, जबकि घुड़सवारी की टीम स्पर्धा में भी भारत को रजत पदक मिला, जिसमें आशीष मलिक, राकेश कुमार, जितेंद्र सिंह और फवाद मिर्जा शामिल थे। और इसके अलावा बैडमिंटन में काफ़ी निराशाजनक शुरुआत रही थी, जब एच एस प्रणय और के श्रीकांत हार कर बाहर हो गए, और टीम इवेंट में भी भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन रहा। लेकिन महिला एकल में साइना नेहवाल ने थाईलैंड की रथचानो किंतनोन को क्वार्टर फाइनल में 21-18, 21-16 से, और पीवी सिंधु ने थाईलैंड की नित चावन जिंदापोल को 21-11, 16-21 और 21-14 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है, यानी भारत के पदक यहां पर पक्के हैं। साइना नेहवाल सेमीफाइनल में चीन ताइपे की ताइजू युंग का सामना करेगी। अगर मुक्केबाजी की बात की जाए तो 69 किलो भार वर्ग में मनोज कुमार किर्गिस्तान के अब्दुरा खमानो से दूसरे दौर में 5-0 से हार गए। हालांकि अभी काफ़ी मुकाबलों के परिणाम आने बाकी हैं, जिसमें मोहम्मद हुसामुद्दीन 56, धीरज रांगी 64, अमित फांगल 49 किलो और विकास कृष्ण यादव 75 किलो भार वर्ग में अपना दमखम दिखाएंगे। हॉकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया, और मुक्केबाजी में 51 किलो भार वर्ग में सरजू बाला देवी ने तजाकिस्तान की मदीना दफरुआ को 5-0 से हराया, और अब क्वार्टर फाइनल में वो पहुंच गई हैं। तो कुल मिलाकर संदीप, ये कहा जा सकता है कि भारतीय एथलीटों ने आज अच्छा किया, क्योंकि भारत की जोना मुर्मू और अनु राघवन 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और टेबल टेनिस में महिला टीम स्पर्धा में भारत ने ईरान को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है,
और इस प्रदर्शन के साथ ही पदकों की उम्मीद भी बढ़ गई है। आदेश कुमार गुप्त से खेल समाचारों के बाद चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं कुलदीप मिश्र से।
बीबीसी समाचार। एमरसन मैनगुआगुआ ने जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्होंने देश के लोगों से एकजुट होने और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में योगदान की अपील की। पोप फ्रांसिस ने आयरलैंड में रोमन कैथोलिक चर्च के कथित अपराधों पर ईश्वर से क्षमा याचना की है। अमरीका के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक कहे जाने वाले सीनेटर जॉन मैकेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उत्तर कोरिया के सरकारी अखबार रोडोंग सिनमुन ने अमरीका पर जानलेवा स्पेशल यूनिट समेत गुप्त सुरक्षा ड्रिल चलाने का आरोप लगाया है। समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। अगला प्रसारण नमस्कार भारत, समय जानते हैं आप भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन bbchindi.com है आपके साथ। शुभ रात्रि।